अभिमान पूरे दिन से परेशान था। सुबह वो अभिमन्यु से मदद की उम्मीद के चलते गोवा भी गया था, लेकिन उसे इशिका मिली थी। अभिमान ने इशिका को उसके और अभिमन्यु की शादी के बारे में बता दिया था, और इस बीच उसे अभिमन्यु से बात करने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद आशुतोष के फोर्स करने पर उसे सगाई में आना पड़ा। अभिमान ने आशी से सगाई कर तो ली थी, लेकिन उसे अभी भी उस घर में आशिका दिखाई देती थी। काफी सारे मेंटल प्रेशर के बाद अभिमान थक गया था। वो आशिका के पास पहुंचा। उसकी तबीयत खराब थी और उसे तेज बुखार हो गया था। आशिका से बातें करते हुए अभिमान अचानक उसके कंधे पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। वहीं अभिमान के अचानक बेहोश होने पर आशिका घबरा गई थी। उसने जल्दी से अभिमान को संभाला और घबराई आवाज में कहा, अभिमान अभिमान क्या हुआ तुम्हें? आशिका ने जैसे तैसे करके उसे सोफे पर लिटाया और जल्दी से उसका टेम्परेचर चेक किया। अभिमान को काफी तेज बुखार था। आशिका ने उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे थे, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया था। ऐसे में आशिका बहुत घबरा गई थी। आशिका ने जल्दी से रचित को कॉल किया और कहा, देखो तुम जहां भी हो अभी अभिमान के प्राइवेट पेंट हाउस में आ जाओ, ही इज नॉट वेल। एक सेकंड, अभिमान को यहाँ अपनी सगाई में होना चाहिए, वो तुम्हारे पास कब पहुंचा? रचित हैरानी से बोला और उसने इधर उधर देखा। वो अभी भी सिंघानिया मेंशन में था, जहाँ अभिमान उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। रचित ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, ये लड़का भी ना थोड़ी देर भी यहाँ रुक कर एडजस्ट नहीं कर सकता। फिर उसने गहरी सांस लेकर आशिका से कहा, ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं राघव के साथ पहुंचता हूँ। खुद से दरवाजा मत खोलना, हम लोग घर अनलॉक कर सकते हैं। रचित राघव के पास गया और उसे सारी बात बताई। सच में किसी को एहसास तक नहीं था कि अभिमान बीच पार्टी में से चला गया था। उन्होंने आशी की तरफ देखा, जो अपने दोस्तों के साथ फोटोज क्लिक करने में बिजी थी। उसे देखना छोड़ो और चलो, राघव बोला और रचित का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। कुछ ही देर में राघव और रचित दोनों ही अभिमान के घर पर पहुंच चुके थे। अभिमान को अभी भी होश नहीं आया था और उसे उतना ही तेज बुखार था। आशिका उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, फिर भी अभिमान का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। तुम यहीं रुको, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, रचित ने आशिका से कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, आशिका सख्त आवाज में बोली। तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं है, अभिमान ने तुम्हें यहाँ रखा है तो किसी रीजन से ही रखा होगा। डोंट वरी, हम तुम्हें इसकी हेल्थ अपडेट देते रहेंगे, राघव ने उसे काफी समझदारी से धीमी आवाज में समझाया। आशिका जानती थी कि उसका बाहर निकलना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अभिमान को अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं मास्क पहन लूंगी और अच्छे से जानती हूँ खुद को कवर कैसे करना है, आशिका ने जवाब दिया और जल्दी से दौड़कर अंदर गई। अगले कुछ सेकंड्स में वो केप और मास्क लगाकर तैयार थी। उनके बाहर निकलते ही घर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था। रचित, आशिका और राघव अभिमान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। अंदर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जबकि वे तीनों बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। आशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। आशिका ने रचित की तरफ घूर कर देखा और कहा, अभिमान ने मुझे बताया कि उसकी शादी तुम्हारी वजह से हुई थी, तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, एक दोस्त अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? वो उस लड़की से नफरत करता है और उसके साथ नहीं रहना चाहता। एक ताने मारने वाला कम था क्या जो दूसरी भी आ गई? ठीक है, हो गई मुझसे गलती, अब क्या सब मिलकर मेरी जान लोगे? रचित ने चिढ़ते हुए कहा। प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ, ये हॉस्पिटल है, राघव ने उन दोनों को डांटा। आशिका और रचित ने एक दूसरे की तरफ घूर कर देखा और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, कई बार स्ट्रेस के चलते ऐसा हो जाता है और लगता है पेशेंट ने पूरे दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, मैंने ड्रिप लगा दी है, लेकिन उनके उठते ही प्लीज पहले उन्हें कुछ खाने को दे दीजिएगा, कल दोपहर तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, राघव ने जवाब दिया। डॉक्टर के जाने के बाद राघव ने आशिका की तरफ देखकर कहा, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम रचित के साथ घर जाओ, जब अभिमान को होश आ जाएगा तब मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आशिका ने जवाब दिया। देखो जिद मत करो ऐश, अभिमान ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच नहीं बताया है, लेकिन अगर वो तुम्हें उस घर में रख रहा है जिसके बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता, तो जरूर बात तुम्हारी सेफ्टी से जुड़ी हुई है, राघव ने थोड़ा सख्त होकर आशिका को समझाया। राघव का बिहेवियर काफी मैच्योर और सख्त था। आशिका ने प्लीडिंग आई से रचित की तरफ देखा, वही उसकी मदद कर सकता था। रचित ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है ना, इसे यहाँ पर रुकने दो, कल जब अभिमान को होश आ जाएगा तब सब साथ ही चलेंगे, बाकी हम दोनों यहाँ हैं तो इसका ख्याल भी रख लेंगे। ठीक है, फिर तुम इसे लेकर अभिमान के रूम में जाओ, मैं सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ बाहर अपॉइंट कर देता हूँ, राघव ने आशिका को वहाँ रुकने की इजाजत दे दी थी। आशिका रचित के साथ अंदर कमरे में चली गई, उन्हें अभिमान के होश में आने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अभिमान नहीं था, इस बात की तरफ कभी न कभी सबका ध्यान जाना ही था। जब उन्होंने अभिमान को वहां नहीं देखा तो लोगों की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई थी। आशुतोष को ये कभी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी बेटी पर उंगली उठाए। आशुतोष को अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। उसने आकाश और काजल को अलग कमरे में बुलाया, उनके साथ निशा भी थी। अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं?
पहले आपका बेटा सगाई में लेट आया और अब गायब हो गया। मैं लोगों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। उसने डांस भी नहीं किया और ना ही अपनी तरफ से आशी के लिए कुछ स्पेशल किया। आई डोंट नो, आप उसे अभी बुलाइए। अगर वो मेरी बेटी के साथ यही बर्ताव करता रहा तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। आशुतोष ने अपना फैसला सुना दिया था। आकाश ने गुस्से भरी निगाहों से निशा की तरफ देखा। निशा की नजरें नीची हो गई थी। वो सबके सामने निशा को कुछ कह नहीं सकता था। मजबूरी में आकाश ने फोन का स्पीकर ऑन करके अभिमान को कॉल करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभिमान का मोबाइल उसके घर पर ही रह गया था और कोई रिसीव नहीं कर रहा था। देख लिया आपने बेपरवाह बेटे को, आपका कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें ये शादी करनी चाहिए, आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आशी अभिमान से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। एक बार उसके दोस्तों को कॉल करके देखिए, मेरे पास उनके नंबर है, निशा ने घबराई आवाज में कहा। उसे अभिमान के लिए डर लग रहा था। निशा के कहने पर आकाश ने राघव को कॉल किया। उसने एक बार में ही कॉल रिसीव कर लिया था। आकाश गुस्से भरी आवाज में बोले, कहाँ हो तुम राघव, और अभिमान कहाँ गायब हो गया? क्या वो यहाँ हम सबका तमाशा बनाने के लिए आया था? वी आर रियली सॉरी अंकल, हमें अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा। अभिमान बेहोश हो गया था और उसे बहुत तेज बुखार भी है, राघव ने गंभीर आवाज में कहा। अभिमान जब यहाँ आया था तब उसने बहाना बनाया था कि वो हॉस्पिटल से आ रहा था। आशुतोष को अभी भी लगा कि अभिमान झूठ बोल रहा था। आशुतोष ने सख्त आवाज में कहा, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड को उसके झूठ में। राघव ने आइस रोल की और तुरंत कॉल को वीडियो कॉल में ट्रांसफर कर दिया। उसने कैमरा स्विच करके हॉस्पिटल को दिखाना शुरू कर दिया। फिर वो मोबाइल लेकर अभिमान के कमरे में पहुंचा। अंदर आते वक्त राघव ने इशारे से आशिका को पीछे हटने के लिए कह दिया था और फिर उसने उन सबको अभिमान का चेहरा दिखाया। अभिमान अभी भी बेहोश था और उसकी ड्रिप लगी हुई थी।
अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राघव ने गंभीर आवाज में कहा। वहीं अभिमान को अचानक इस तरह हॉस्पिटल में देखकर निशा घबरा गई थी। वो जल्दी से बोली, राघव क्या हुआ है अभिमान को, वो बेहोश क्यों है? डॉक्टर ने क्या कहा, उसे कब होश आएगा?
डॉक्टर ने यही कहा है कि कुछ देर में उसे होश आ जाएगा आंटी, वो संजीवनी हॉस्पिटल में है, आप चिंता मत कीजिए, उसे होश आने के बाद मैं आपसे उसकी बात करवा दूंगा। राघव काफी आराम से निशा को समझा रहा था। वो जानता था कि अभिमान को हॉस्पिटल में इस तरह देखकर वो परेशान हो गई थी। अगले ही पल उसके बोलने का लहजा बदल गया और वो तंज भरे लहजे में आगे बोला, अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं है तो वो यहाँ आकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं।
नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभिमान का ख्याल रखो, काजल ने बात को संभालते हुए कहा। राघव ने कॉल कट कर दिया था। कॉल कट होते ही काजल ने आशुतोष से कहा, हमें अभिमान से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा बिल्कुल शांत थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। काजल ने निशा का हाथ सहलाकर कहा, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम शादी को पोस्टपोन कर सकते हैं, ये हम हॉस्पिटल चलकर डिसाइड करेंगे, आशुतोष ने बिना किसी भाव के कहा। आकाश को अभिमान की बीमारी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसे अभिमान को देखने जाने में दिलचस्पी थी। ठीक है फिर, आप लोग अभिमान से मिलने चले जाइए और साथ में निशा को भी ले जाइए, मैं यहाँ पार्टी और गेस्ट को हैंडल करता हूँ, आकाश ने बहाना बनाया। आशुतोष ने उसकी बात पर हामी भरी और काजल और निशा को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया था। वहीं राघव उनसे बात करने के बाद आशिका के पास गया। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में अभिमान की फैमिली यहाँ पहुँच जाएगी, बाकी लोगों का पता नहीं पर निशा आंटी जरूर आएंगी, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है ऐश, राघव ने उसे समझाया। आशिका ने फिर से रचित की तरफ देखा। वो राघव से किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। रचित ने सिर हिलाया और चिढ़कर कहा, अजीब मुसीबत है, थोड़ी देर पहले तुम पूरी सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम कर रही थी और अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए एली से इंडिया आई थी, वो तुम ही थे ना जो मुझे बार बार मेल कर रहे थे, आशिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ठीक है, इसे यहाँ रुकने देते हैं, वैसे भी कौन सी ये हमारी बात सुनने वाली है, मैं मैनेज कर लूंगा कि इसे अभिमान की फैमिली से कैसे छुपाना है, रचित ने कहा। एक पल के लिए आशिका अभिमान के चक्कर में ये भूल गई थी कि आकाश अभिमान का डैड है, वो भी उससे मिलने के लिए आ सकता था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो आकाश को अभिमान की परवाह नहीं थी और वो उससे मिलने नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में आशुतोष काजल और निशा के साथ वहां पहुंच गया था। उनके आने से पहले ही रचित आशिका को लेकर कमरे से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ जाते हुए आशिका ने काजल को देख लिया था। ये तो वही आंटी है ना जो उस दिन मॉल में मुझे संस्कारों का ज्ञान दे रही थी, कहीं ये अभिमान की मॉम तो नहीं, आशिका ने मन ही मन कहा। रचित उसे कैफेटेरिया में ले आया था, देर रात होने की वजह से वहां कोई मौजूद नहीं था। रचित ने आशिका से कहा, चाहो तो अपना मास्क निकाल सकती हो। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और अपना मास्क निकाल दिया था, हालांकि उसने अभी भी केप पहनी हुई थी। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, रचित ने पूछा। हाँ, मेरे लिए भी एक कैपुचिनो ले आना और साथ में कुछ खाने के लिए भी, उस मनहूस सगाई में एंजॉय करना तो दूर की बात है, खाना भी नहीं खा पाया, आशिका ने जवाब दिया। आशिका कॉफी मशीन के पास आ गई थी, वो कॉफी बना रही थी तभी अचानक वहां आशुतोष भी आए और अनजाने में उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो गया था। हालांकि आशिका ने अनजान इंसान को देखकर तुरंत अपनी केप को थोड़ा नीचे कर लिया था। आई एम सॉरी, आशिका ने आशुतोष की तरफ देखे बिना कहा।
इट्स ओके, आशुतोष ने भी बेपरवाही से जवाब दिया। दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए थे, इस बात से अनजान कि उन दोनों के बीच एक रिश्ता भी हो सकता है। आशिका ने अपनी कॉफी ली और वहां से निकल गई थी। आशिका बेफिक्र थी कि उसे आकाश के अलावा और किसी से खतरा नहीं हो सकता। इस बात से अनजान की तृप्ति भी इस शहर में घूम रही थी। एक बार के लिए वो सेलिना को बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन तृप्ति को नहीं। सेलिना को फूड पॉइजनिंग हो गया था और वो तृप्ति को लेकर इसी हॉस्पिटल के अंदर आई थी। सेलिना को डॉक्टर के पास भेजने के बाद तृप्ति हड़बड़ाहट में चलकर आ रही थी कि वो आशुतोष से टकरा गई। इतने सालों बाद आशुतोष को अपने सामने देखकर तृप्ति हैरान रह गई, तो वहीं आशुतोष को भी झटका सा लगा था। पुलिस ने यही कहा था कि उनकी बेटी आशिका मर चुकी थी, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी और कहीं न कहीं आशुतोष को उम्मीद थी कि इस दुनिया में आशिका मौजूद है। जैसे ही तृप्ति ने आशुतोष को देखा, वो जल्दी से वहां से भागने लगी। ये यहाँ पर है, इसका मतलब मेरी बेटी भी इसी शहर में होगी, जरूर वो इसके पास है, आशुतोष ने घबराई आवाज में कहा और कॉफी को वहीं पर छोड़कर तृप्ति के पीछे भागने लगा।